अगली सूरत है सूरत आल इमरान। थोड़ा सा इसका पिछले हिस्से से रफ। सूरत बकरा में हमने बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी, जो माजी के मुसलमान थे। उसके बाद जो दूसरा गिरोह सामने आता है वो नसारा का है। सूरत आल इमरान जो है ये बहुत ही खूबसूरत सूरत है, दूसरी तवील सूरत है कुरान की। जिस तरह हमने सूरत बकरा के अंदर बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी, तो बनी इसराइल के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। याद रखिए कि हजरत याकूब के बेटों से ये नस्ल शुरू हुई थी। ये बहुत अहम बातें हैं जो शायद आपने कभी इस तरह रब्त में ना सुनी हो पहले से। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना ओवरऑल, इस तरह बनी इसराइल जो अपने दौर का बहुत बड़ा गिरोह था और सबसे ज्यादा नबी उसी कौम में आए थे, उनके आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। यानी हजरत ईसा और नबी सल्लम में बहुत सारी मुमासलतें हैं, जिसमें ये एक बहुत बड़ी मुमासलत है। नसारा ने हजरत ईसा के साथ अपने आप को जोड़ा, लेकिन उनके बारे में बाद के अदवार में कुछ मिसकॉन्सेप्शन हुई। जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, लोग उनको नबी मानते थे, लेकिन उनके दुनिया से उठाए जाने, जो आज भी हमारे ईमान के मुताबिक जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं और वो वापस आएंगे क़यामत के करीब, ये सब कुछ हम सूरत मायदा में इंशाल्लाह आयतों की रोशनी में पढ़ेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे वो एग्जेजुरेशन का शिकार हो गए और उन्होंने इस तरह से चंद गलत फहमियों की बुनियाद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी कहने की बजाय अल्लाह का बेटा का, यानी जो उनकी किताबों में बात थी वो नबीयुल्लाह थी, नून को बा को नून कर दिया उनके चंद मजहबी रहनुमाओं ने, तो नबी जो था वो बनीयुल्लाह बन गया। इस तरह की बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन हुई थी। हम इस सूरत में जो चीज़ देखेंगे वो पहली बात जिसे आप सब खुश हो जाएंगे, खिल जाएंगे, और वो क्या कि इस पूरी सूरत में एक भी हुक्म नहीं है, नो डूज, आपको कोई अमल नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, दुआओं से भरी हुई सूरत है। तीसरी बात, किस्सों कहानियों से भरी हुई सूरत है। हम इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे। कुरान पाक में नबियों की सीरत महफूज है, जैसे सूरत कसस में और आगे सूरत तौहा में देखते हैं तो हजरत मूसा की सीरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत अलग महफूज है, लेकिन चूंकि पिछले अंबिया की सीरत हमें और कहीं से मिल नहीं सकती थी और आज के दौर में बाइबल में तो उसमें बहुत सारी खुराफात शामिल हो गई, तो इसको हम पढ़ेंगे। और आले इमरान का लफ्ज भी असल में हजरत ईसा के नाना की तरफ है, इमरान उनके नाना थे, उनकी नानी का नाम हन्ना था जिसका जिक्र आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और उनकी माँ मरियम। ये सारी कहानी है इसमें, जकरिया याह्या ये पूरी फैमिली से मिलेंगे। उम्मत मुस्लिमा इसको क्यों पढ़े, मैं और आप क्यों पढ़े, हम देखेंगे कि अल्लाह सुबहान तआला ने इस सूरत के अंदर कितने खूबसूरत तरीके से आज हमें दूसरों को इस्लाम के दलाइल देने सिखा दिए। शुरू में हम देखेंगे वफद नजरान आया था, उसके साथ कैसे हुआ, यानी हजरत ईसा खुदा नहीं हो सकते, उसके अमली दलाइल के साथ ये सूरत शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। मुमासलत, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान में बहुत सारी मुमासलत मींस सिमिलेशंस भी हैं, और इन दोनों को हदीस में अल ज़हरवैन कहा गया, दो चमकती हुई सूरतें। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इन दोनों सूरतों को पढ़ा करो, जादूगर और बातिल परस्त इसकी ताब नहीं लाते। यानी अगर आपको शक है किसी असर का, किसी सुस्ती का, नकाहत का, जादू टूने का, आप इन दोनों सूरतों को पढ़ें। फिर आप देखिए वो भी सूरत अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है, तो ये भी अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है। सूरत बकरा में यहूद का तस्करा है, तो आले इमरान में नसारा का तस्करा। उधर शरीयत के इतने ज्यादा अहकाम थे, इधर शरीयत का कोई हुक्म नहीं है। इसका भी इंजाम दुआ से भी हमने पढ़ा सूरत बकरा का, तो सूरत आले इमरान का इंजाम भी दुआ से होगा। और बदर से उहद तक के दौर के बीच में ये सूरतें नाजिल हुई थी, इसको सामने रखेंगे तो आप नबी सल्लम के नाते से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। फिर दूसरी बात देखिए कि अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो निजामे कायनात को संभाले हुए है। इस आयत के बारे में आता है कि इसमें इस्मे आजम है। कुरान पाक की तीन आयात, आयतुल कुर्सी और इस सूरत की ये आयत, और इसी तरह से सूरत तौहा की चंद आयात है, जिन तीनों के बारे में हदीस हमें मिलती है कि इनके अंदर इस्मे आजम है। जब सबको जमा करें तो कॉमन नाम जो इसमें वो अल हय्युल क़य्यूम है, तो हो सकता है अल हय्युल क़य्यूम में इस्मे आजम हो। हम अगर कभी भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला के इन नामों के साथ मांगेंगे, इंशाल्लाह कबूलियत के चांसेस ज्यादा होंगे। نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل। इसने तुम पर ये किताब नाजिल की है जो हक लेकर आई है और इन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील को नाजिल कर चुका है। नोट कीजिएगा, इससे पहले नाजिल कर चुका है। मिन कब्ल हुदल लिन्नासि व अनज़ल अल फुरकान, और इसने अब वो मेयार यानी वो क्राइटेरियन यानी कसौटी नाजिल कर दी जो हक और बातिल का फर्क बयान करने लिए। इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे हमारे बच्चे भी कह सकते हैं और आपका भी दिल करता होगा कि कभी हम बाइबल कोई सोच से तो पढ़ें कि उनकी किताबें क्या कहती हैं। तो याद रखिए कि जो आज की बाइबल है वो तौरात और इंजील का मजमुआ है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में बल्कि इवन हर साल उसमें चेंज होती जा रही हैं। अगर मुझे और आपको शौक है कि हम इंजील पढ़ें या तौरात पढ़ें, कुरान में मौजूद है। सूरत मायदा में आप देखेंगे तौरात की बहुत सारी आयतें, तो जो ठीक बातें थी ऑथेंटिक थिंग्स थी तौरात की और इंजील की, अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल कर दी। और कुरान को इसीलिए तो फिर कहा कि ये कसौटी है यानी हक और बातिल को परखने की। अब जो लोग अल्लाह के अहकामात को कबूल करने से इनकार करेंगे, इनको यकीनन सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह ताला बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। यहाँ मैं एक हल्की सी बात की तरफ इशारा करूंगी कि बाज दफा हम मुसलमान अपने बच्चों को कुछ ऐसे प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं जहाँ उनके रिलीजन की तालीम सिखाई जाती है। अब होता क्या है कि जिस तरह हम अपना इस्लामिक स्कूल जैसे ये इल्म अकेडमी है, तो यहाँ इस्लामिक तालीम दी जा रही है। जब आप अपने बच्चों को किसी स्पेशल स्कूल में पब्लिक स्कूल से निकाल के डालते हैं तो वहाँ उनको एजुकेशन देते हैं, और एजुकेशन के नाम पे वो अपनी क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं। मैंने एक जगह एक हमारी स्टूडेंट थी, तो उनसे जब ये बात सुनी को उनका क्वेश्चन था, तो मेरे तो कान खड़े हो गए कि इनका एक पीरियड है जिसमें वो इनको क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि क्या आपका बच्चा कुरान पढ़ चुका है? क्या उसको हदीस आती है? वो कुछ नहीं आता। कच्चे कागज पे जब आप उनके बातें लिख देंगे और वो कहने को तो वो प्रॉफिट्स की बातें पढ़ाते हैं, और जो पढ़े तो अल्लाह की बना जिसमें उन्होंने नबियों का जिना भी साबित किया हुआ, उनका शराब पीना भी साबित किया हुआ, और उनका अपनी बेटियों से बदकारी करना भी साबित किया गया। इनकी तो हिस्ट्री में ये मौजूद है कि इन्होंने हर दीन की बात करने वाले की किरदार कुशी की ताकि एक दीन वालों पे हम तनकीद करें और लोग हम पे नजर ना रखें। तो याद रखिए, एक क्राइटेरियन अपने लिए रखें, इवन आप सब भी, आप पढ़ें तो रात इंजील कब पढ़ें? जब एक दफा कुरान पढ़ चुके हैं। आपके बच्चे को स्कूल तो आपने दिया संडे या सैटरडे का, जिसमें हफ्ते में एक ही दिन सिर्फ आपने उसको दीन सिखा दिया। अब जब स्कूल में 5 दिन वो अपने सब्जेक्ट के नाते से ये पढ़ेगा, तो आप सोचिए कि रंग किसका गालिब होगा। आज जो नस्लों में पोल्यूशन आ रहा है और जो सोच डाइवर्ट हो रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि हक तो दिया नहीं तो बातिल सामने आ गया। करें क्या? आप माओं पे फर्ज है, यानी अगर आप चाहती हैं ना कि एक नई खेती तैयार हो, हम सब इस साल अल्लाह से ये दुआएं मांग के उठेंगे कि अल्लाह हमारी ही कोखों से, हमारी ही नस्लों से वो बच्चे पैदा हों जिन्होंने दुनिया में इस्लाम का गलबा लाना है। तो उसके लिए आपको और मुझे पैदा होने से लेकर मुख्तलिफ उम्र के और अदवार के नाते से बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, और 15 से 18 साल यानी जिस उम्र में आपको शनाख्ती कार्ड मिलता है या ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है या लीगली आप उससे पहले शादी नहीं कर सकते, उस उम्र को हद बना लीजिए कि आपने जिस तरह कम अज कम इस लेवल पे, जिस लेवल पे इस वक्त आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपने अपने एक एक बच्चे के साथ बैठकर इस तरह से कुरान उनको सिखाना है। घर में फैमिली टाइम रखें। आजकल से ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे? देखिए, आजकल आप सबको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि माशाल्लाह रोजे हैं, बच्चे भी रखते हैं, छुट्टियां भी हैं, बहुत सारों के घरों के मर्द भी मगरिब से पहले आते हैं, और चूंकि दिन लंबा है तो मगरिब लेट हो रही है, 7:30 से 8 बजे का टाइम, आधा घंटा, या 7:30 से 8 नहीं तो चले 8 से 8:30 कर लें, हाफ एन आवर आप स्टडी टाइम बनाएं। खाना पहले बना लें, जो खजूर पानी, और मैंने देखा है कि माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग मस्जिदों में इफ्तारी करते हैं, वेरी गुड, आप मस्जिदों वालों से बात करें, आधा पौना घंटा वहां रखें, सूरत फतेह से लेकर रोज थोड़ा सा खुलासा। अगर आप इसमें कोई रिकॉर्डिंग चाहते हैं इंग्लिश की, उर्दू की, किसी भी चीज की, आप रब्ता करें, हम आपको कई चीजें दिखाने को तैयार है। किसी से बात कर लें जिनकी बात करने का वाकई लोगों को असर है, तो आप अपने बच्चों को इस महीने में इस तरह का एक छोटा सा दौरा कुरान करा दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे वो कम अज कम ये तो फील करेंगे ना कि हमारी माएं जो सीख रही हैं वो कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। फिर इसके बाद जब वो अपना दीन सीखते हैं, फिर दुनिया में कहीं भी जाएंगे अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। हजरत यूसुफ का किस्सा हम पढ़ेंगे आगे जाके, बिल्कुल बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड, जैसे आप कह लीजिए कि 10-12 साल की उम्र से पहले बाप से जुदा हो गए, अब ना बाप पास है ना माँ पास है, और उधर एक औरत गंदगी की तरफ बुलाती है, लेकिन रुक गए। किस चीज का असर था? बाप की तालीमात का असर था। अगर हम अपने बच्चों के बारे में क्यूरियस हैं, दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं, आपके बच्चे दुनिया के किसी मुल्क में रहें, किसी बुरे से बुरे माहौल में जाए, उनको रंग नहीं चढ़ेगा। मसला क्या होता है कि अपना रंग दिया नहीं होता, दूसरों के रंगों में छोड़कर बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं, कार्टूनों से बच्चों पर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ खुद वो कार्टून एक नजर देख लिया करें जो आपके बच्चे, मासूम बच्चे देखते हैं, और मैं हैरान होती हूँ वो माँ कि बच्चे को लगा के कैसे देती है। नबियों का मजाक, हजरत मूसा को फ्रॉक पहने हुए वो दिखाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो आम बड़ी फिल्मों में होता है, सिर्फ वो किरदार बदले होते हैं। आप कभी सोचे तो सही किस तरह से हम अपने बच्चों को इस चीज के लिए फेंक देते हैं जबकि हमारी वो इतनी कीमती दौलत है। डायमंड्स हम अपने लॉकर्स में रखे, गोल्ड हमारा बैंकों में है, और कीमती चीजें हमने छुपा के रखी हुई हैं, और सोने चांदी हीरे मोतियों से कीमती औलादें हमारी इस तरह गैरों में बाहर फिर रही हो और हमें परवाह ही नहीं। हम बस इस पे ही बहुत खुश हैं कि चले वो कुछ कर तो रहे हैं ना, उनको इंग्लिश तो बोलनी आ गई, कुछ भी करें वो सब है, लेकिन जो माँ बाप शऊर रखते हैं उनके बच्चे नहीं बिगड़ते। इसी मुल्क में मैंने ऐसे ऐसे आइडियल घराने देखे हैं कि उनके बच्चों को देखकर दिल करता कि प्यार करो। इतने डिसेंट, इतने मुहज्जब, 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी, उनकी किरत मिशारी की खैरत से जोड़ के देख लीजिए, सुदई से देखें, क्योंकि माँ बाप बाशऊर है। तो आपके उनको कहीं भेजने या जाने से बात नहीं बनेगी, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, जिस एज तक अभी हमने उनको कुरान भी नहीं पूरा कराया होता, नमाज की भी अहमियत नहीं, अगर उनकी वापसी का वक्त आ गया, अगर उनकी रुख्सती उस तरफ चल पड़ी आपके घर से रुख्सत होने से पहले, तो क्या जवाब देंगे? क्या वो बच्चे कल क्यामत के दिन हमारे गिरेबान नहीं पकड़ेंगे? अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाए, जमीनों आसमान की कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं, यानी इस वक्त जो आपके दिल के अंदर जो मद्दो जजर है, जो टाइड्स आ रही हैं, अल्लाह को वो भी पता है। वही तो है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता बना, आपकी मेरी सूरत अल्लाह का फैसला है। कभी अपनी सूरत को बुरा ना कहें और किसी की शक्ल के सहर में ना मुबतला हो। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। आज तो इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो गए कि बच्ची का रंग जरा सा दबाओ तो माँ परेशान हो जाती कि इसका रिश्ता कहाँ से आएगा। याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने शक्लें बनाई हैं, और अगर शक्लों से नसीब बनते हैं तो फिर हर खूबसूरत लड़की बहुत ही राज करती, और जो बाप भी शक्ल की औरतें उनके तो घर कभी ना बनते। हालांकि अमूमन इससे ऑपोजिट ही देखा गया, इल्ला माशाल्लाह। तो शक्लो सूरत को कभी डिस्कस ना करें। हमारे कल्चर में ये भी एक प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा हो तो शक्ल की बात करेंगे, शादी होगी तो दुल्हन कैसी लग रही है, और अब तो हद ये हो गई कि फौतगी के वक्त भी शक्लों पे बातें होती हैं, किसके चेहरे पे नूर था किस पे नहीं था। तो कभी ना करें, और ब्यूटी कॉन्शियस भी नहीं होना, कई कई घंटे मशीनों में रहना और पार्लर्स पे रहना उम्मत वसत को सूट नहीं करता। वंस अ व्हाइल इट्स ओके, ईद का मौका है, अपने आप को मेंटेन रखना और बात है, लेकिन हर वक्त इस गम में, कभी आप अपने फीचर्स बदल रहे हैं, कभी आप अपने फिगर को चेंज कर रहे हैं, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ आप अपने आप को एक बुत बना के पूछना चाहते हैं तो हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है। हदीस में आता है कि जन्नत की औरत इतनी हसीन और जमील होगी कि जब वो शरबत पिएगी तो उसके जिस्म में से ऐसे झलकेगा जैसे क्रिस्टल को सुर्ख डोरी में से पिरो दो। तो खूबसूरती वहां बहुत मिल जाएगी। हम इधर कितने भी खूबसूरत हो जाएं लेकिन अल्लाह की निगाहों में हमारा कोई मुकाम ना हो तो शक्ल कुछ नहीं होती। ये पूछिए कि अल्लाह को हमारी शक्ल कैसी लगती है। इस जबरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और जात नहीं, वही अल्लाह है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की, यदि तुम्हें भी वो बना रहा है तो इस किताब को भी वही भेज रहा है। मिन हुआ आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, इस किताब में दो तरह की आयात है, एक है हुक्म वाली जो किताब की असल बुनियाद है, और वह उखरा मुतशाबिहात, और दूसरी शुबे वाली है जिसके अंदर शुबा पड़ जाता है जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। होगा क्या, यहां समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने इस किताब में ना सिर्फ ये कि इस दुनिया के हालात बताए हैं, थिंग्स टू डू करो, कैसे नमाज पढ़ो, रोजे रखो, बल्कि हमें आखिरत की भी बातें बताई हैं, जन्नत की चीजें, जहन्नम की चीजें, गैब के मामले। तो जब दो मुख्तलिफ जहानों को इस किताब में डिस्कस करना था तो आयतें भी दो तरह की है। वो आयतें सीधी सादी जिसमें आपके लिए मेरे लिए कोई डूज है या डोंट्स है, कोई हुक्म है उस पर गौर कीजिए, वो है असल उम्मुल किताब। इसके बरक्स जन्नत में क्या होगा, अल्लाह का हाथ कैसा है, और सिदरतुल मुंतहा पे क्या हुआ था, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा कि नहीं, और जिब्राइल कैसे थे, इससे मेरा और आपका क्या है। तो अमल की बात अल्लाह ने बता दी कि हुक्म वाली बातों पे गौर करो, लेकिन अब देखिएगा अगले हिस्से में दो तरह के लोग हैं। कुछ को अमल करना होता है वो तो सीधा सीधा हुक्म वाली आयतें लेंगे कि शुक्र अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हम चलने लगे, लेकिन कुछ दूसरे जिनको अमल नहीं करना, जो फरार चाहते हैं, दे वॉन्ट एस्केपिज्म, वो क्या करते हैं, वो शुबे की बातों में रहेंगे। अच्छा साहब, काब के कुत्ते कितने थे, अच्छा जी वो किस रंग के थे, और वो किधर गए, और दुनिया में चांद किधर है और सूरज किधर जाता है। आज इंटेलेक्चुअली इस तरह से मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है कुरान को कि अमल को पीछे से पीछे कर दो और दूसरी तरफ अपने आप को पीछे रखो। तो अल्लाह ताला कहते हैं फअम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु, बस वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है, किस चीज का टेढ़ है, अमल नहीं करना चाहते, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं, और इनको मानी पहनाने की कोशिश करते हैं حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے خلاف جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں اس کو ہائی لائٹ کیجیے، راسخونہ فی العلم، رسوخ اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی بہت خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس طرح سے لے کر چلنا کہ جس کو آپ اس طرح امیجن کیجئے کہ پختگی لانا. مثلا دیکھیں کہ عام تعلیم سب لے لیتے ہیں، ایم بی بی ایس سب کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے بعد اسپیشلائز کرتے ہیں، اور وہ اسپیشلائزیشن کس کی ہوتی ہے؟ کسی کی اناٹومی میں ہو گئی، کسی کی نیورولوجسٹ ہو گیا، کارڈیولوجسٹ ہو گیا. تو یہی چیز یہاں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہترین طریقے سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ علم کے درجے ہوتے ہیں. نیا نیا علم آتا ہے نا، تھوڑا علم آتا ہے تو آپ میں سختی آئے گی، بالکل ایسے جیسے نیا کپڑا ہوتا ہے. نیا کپڑا آپ پہنتے نا، آپ کو چپتا بھی ہے، بوجھ بھی لگتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن آپ خوش ہیں کہ بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اس کے برعکس جتنا علم پرانا ہوگا، علم بلینڈڈ ہوتا ہے، پھر آپ میں سافٹنس آتی ہے، پھر نرمی آتی ہے، پھر آپ کو دین کا اصل حسن دکھتا ہے. اسی لیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ شروع میں پہلی دفعہ میں قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ہر چیز اپنے اندر نیگیٹو دکھتی ہے، یہ بھی غلط، یہ بھی حرام، یہ بھی وہ، دس دیٹ. اب وہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سنتی نہیں. جس کا اگر یہ دل چاہے نا کہ میں سنتی نہیں ہوں، تو وہ اس آیت کو سمجھ لے کہ ذرا سا صبر کر لیجئے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، جو بیماری وہ سمٹم بتائے گا آپ کو لگے گا یہ میرے اندر بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ریزلٹس آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ مجھے یہ بیماری نہیں. تو جب ہم نیا نیا قرآن سننے بیٹھتے ہیں نا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگ، تو ہمیں بہت سارے ڈاؤٹس آتے ہیں. تو ڈونٹ وری، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں، سٹیپ لیجیے. اللہ کو پتہ ہے آپ نئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے آپ کے بیبی سٹیپس ہیں. ابھی بچہ پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، کئی دفعہ گرتا ہے، پھر بھاگنے لگ جاتا ہے. تو دین کے اوپر عمل میں بھی انسان کو ہمیشہ ترتیب بہترین رکھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سست ہو جائیں. 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اور ہم تو ماشاءاللہ بہت مسلم ہیں. آج ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے تو ہم میں سے تو کوئی بھی نیو مسلم نہیں ہے. ایک نیو مسلم دین کے بارے میں غور کرے، سوچے، تو بات سمجھ آتی ہے. اس کو نماز کی عادت نہیں، وہ الارم لگا رہا ہے، بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کو اگر دین پہ عمل کرنا مشکل لگے، تو پھر وہی بات ہے کہ بچہ بڑا تو ہو رہا ہے لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم کا بھی رسوخ دے اور عمل کا بھی. ایسے لوگوں کا کال کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے، یعنی بحثوں میں نہیں پڑتے. حکم والی آیتیں ہوں یا شبے والی آیتیں ہوں یا جنت کی باتیں ہیں یا غیب کی، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن رب نے نازل کیا. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے پہلی دعا آ گئی ہے اس وقت، اور ہم سب پڑھیں گے اس کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اب اس دعا کو دل میں رکھیے کہ واقعی یہ دعا میں نے مانگنی ہے. تو اس کا ترجمہ سنیے گا. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا فرما، کیونکہ تو ہی حقیقی طور پہ دینے والا ہے. کتنے لوگوں کے دل کی یہ پکار ہے کہ اللہ بڑی مشکل سے قرآن کی طرف قدم لگے. کب سے دعا مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ بھی، قرآن ہمارے لیے ایک فرسٹ سٹیپ بن گیا، اب اس سے قدم نہ ہلانا. ابھی تو تیسری سیڑھی پہ، اللہ تیسویں پہ بھی لے کے جانا. اس شعور سے اس دعا کو خود سے یاد کریں، مانگیں کہ اللہ میرا یہ سفر پورا ہو، کوئی چیز مجھے یہاں آنے سے نہ روکے. کیونکہ سننا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے. دیکھیے آپ ڈاکٹر کب بنیں گے؟ جب آپ میڈیکل کالج جائیں گے، 4-5 سال لگیں گے، پھر ہاؤس جاب ہوگی، پھر کیا کچھ ہوگا. گھر بیٹھ کے تو کبھی ڈاکٹر نہیں بنا. آپ قرآن کو گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے، لیکن ہدایت کب ملتی ہے؟ جب سب کے ساتھ ملتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے اسٹوڈنٹ بناؤ. جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہیں بغیر سیل فون چیک کیے اور سانس روک کے بیٹھے ہیں، اکیلے میں ہم کبھی ایسے نہ بیٹھتے. گھروں سے جو سنتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا اپنا من مار کے بیٹھتے ہیں. اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، جو آپ میں سے پہلے گھروں میں سنتے تھے، آج یہاں آ کے سن رہے ہیں، یہاں آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. مجھے تو روز یہ فیل ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ جلدی گھڑی ختم ہو گئی، اور آپ اکیلے ہوں گے تو بہت تھکیں گے. تو مجلس کی ایک برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا. پھر اگلا حصہ ہے دعا کا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے رب، یعنی اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، جب یہ حصہ یاد رہتا ہے تو ہدایت بڑی قیمتی لگتی ہے. آپ اس سفر میں ہدایت کی دعائیں مانگ لیں کہ اللہ مجھے ہدایت لینی ہے، تو سونا دے، چاندی دے، بچے دے، شادی میری ہو نہ ہو، میرا شوہر مجھ سے پیار کرے نہ کرے، یہ سب سیکنڈری ہے، لیکن میں نے اس سال تجھ سے ہدایت لے کے جانی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور دل اتنی جلدی بدلتے ہیں اللہ کی بنا. وہ لوگ جو کل تک لوگوں کو ہدایت پہ بلانے والے ہوتے ہیں، وہ خود ہدایت کی پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. بعض دفعہ نیویگیٹر بھی آپ کو مس ڈائریکٹ کر دیتا ہے اگر آپ نے ڈائریکشن ٹھیک نہ ڈالی ہو. آپ اس کے مطابق پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کی وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے کوڈ غلط ڈالا، نام غلط ڈالا. اسی طرح یاد رکھیں، ہدایت کا سفر بڑا سلپری ہے. یہاں بندہ بار بار بھٹکتا ہے، اس میں بار بار بہت ساری روڈز دکھتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تو ہمیں ہدایت پہ رکھنا، کہ پروردگار یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہر کس اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. پچھلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ فی سبیل اللہ ایک لگاؤ گے تو 700 دانے لوگے، یہ اللہ کے راستے میں لگانے کا اجر ہے. کفر اور کفرانہ کاموں پہ لگانے والوں کا کام کیا، سب راکھ بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی اندھیرے تھے، آخرت کے بھی اندھیرے ہیں. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرداز ماہ ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا چنک دیا آپ کو اور مجھے بدر کا. اس کا اصل لطف ہم لیں گے سورۃ انفال میں. ابھی اس سورۃ آل عمران کے جو فورتھ پارے کے اندر حصہ شروع ہوگا، یعنی اینڈنگ پارٹ آف سورۃ آل عمران، غزوہ احد کی ڈیٹیلز بتاتا ہے، لیکن سورۃ الانفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے، اور یہ سورت نازل اس دور ہمیں اشارہ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، مسلمہ حالات کتنے بھی ایڈورس کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، ان کے پاس جدید ویپنز کیوں نہ ہو، ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، تمہارے گھر میں انہوں نے اپنے سی آئی ڈیز کیوں نہ لگا رکھے ہو، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے گا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تم غالب ہو گے. اللہ امت مسلمہ کا موریل بلند کر رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہ جنگ تھی کہ مسلمانوں سے 2 times more دشمن تھے. مسلمان 313 تھے تو ادھر 1000 تھے، اور مسلمان جیتے. آج ویسٹرن ہسٹورین جو ہے وہ اس بات پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہے کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح کیسے ہوئی. ادھر اتنی جدید ہتھیار، تلواریں، اونٹ اور گھوڑے، اور ادھر ٹوٹی ہوئی تلواریں. لکڑی کی تلوار تھی اکاشا کے ہاتھ میں جس سے جا کے دشمن کو مارا، اور وہ چمکتی ہوئی تلوار میں بدل گئی. کیوں؟ واللہ یعیدہ بنصرہ من یشاء. تو یہ دعا کرے کہ اس وقت اللہ فیصلہ کر لے ہماری مدد کا. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. فرشتوں سے اللہ نے کمی پوری کر دی، کیا اللہ آج فرشتے نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے. لیکن سبق میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ابھی ہم ہیں نہیں. کسی نے کمنٹ کسی سے پوچھا کہ تم بڑے فخر کرتے ہو کہ بھائی مسلمانوں کے لیے تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے، یہ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ فلاں فلاں کئی جنگوں کے نام کوئی بھی لیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ بھائی میرے کہ فرشتے آئے تو تھے لیکن ان کو کہیں مسلمان ہی نہیں دکھے، تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا نقطہ ہے.